दोस्तों, करियर की बात कार्यक्रम के एपिसोड 4 में स्वागत है आपका। साथियों, अर्थशास्त्र में मांग के बारे में तो आपने पिछले एपिसोड में सुन ही लिया है, लेकिन क्या आप मांग की लोच के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हमारे शिक्षक डॉक्टर मुकुंद कुमार से सुने मांग की लोच का ये अध्याय।
गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मुकुंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समस्तीपुर कॉलेज संस्कृत। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो हम मांग के ऊपर अभी अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो मांग में हमने देख लिया है कि उसका स्वरूप जो होता है डाउनवर्ड होता है, और मांग का नियम होता है यानी कि प्राइस और मांग के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स होता है। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व का अलग अलग इफेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे दो चीज क्लियर हो चुका है हमारा, मांग और कीमत। एक और चीज इसमें इंक्लूड कर लीजिए, उसको हम सप्लाई पूर्ति, यानी कि मांग में अगर शिफ्ट हो गया है, अपवर्ड शिफ्ट हो गया है कर्व का, तो इसका मतलब यह है कि समाज में किसी वस्तु की मांग जो है वो बढ़ गई है। अब जितनी मांग बढ़ी है उतनी अगर पूर्ति भी बढ़ जाए तो प्राइस फिक्स रहेगा, पहले जैसा रहेगा। लेकिन मांग के अनुसार अगर पूर्ति में वृद्धि नहीं हुई है तो फिर क्या होगा? अगर मांग से कम पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर मांग से ज्यादा पूर्ति बढ़ गई तो कीमत कम हो जाएगा। तो ये एक रिलेशनशिप होता है, और मांग और प्राइस के रिलेशनशिप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम मांग की लोच पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। जैसे कि एक लॉ ऑफ डिमांड हो गया, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अब इसमें ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये हमें बस दिशा बताता है कि भाई ये कम होगा तो वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा तो ये कम होगा। लेकिन अगर कोई आपसे एग्जैक्टली पूछे कि भाई ऐसे नहीं बताओ, मुझे मैग्नीट्यूड बताओ इसका, कितना परसेंट प्राइस बढ़ेगी तो मांग कितना कम होगा, और कितना परसेंट प्राइस घटेगी तो कितना उसमें मांग में डिफरेंस आएगा, यानी कि एग्जैक्ट अगर परसेंटेज में पूछा जाए आपसे, तो उसको जानने का जो तरीका होता है वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, सपोज करिए कि पहले वो 10 रुपए का था, अब उसका 10% मान लीजिए कि प्राइस बढ़ गया है, तो 10 रुपए से बढ़ के वो 10% बढ़ेगा यानी कि 11 रुपए का हो जाएगा। तो अब जो उसका डिमांड मान लीजिए पहले 100 यूनिट का था, तो अब उसका डिमांड कितना कम हुआ, तो 100 यूनिट से मान लीजिए कि उसका डिमांड जो है वो 90 यूनिट का हो गया, यानी कि 10% से उसमें कमी आ गई। तो ये एग्जैक्टली जो परसेंटेज में या मैग्नीट्यूड में जो हम बताने, जिस विधि से हम बता सकते हैं मांग के बढ़ने या घटने और कीमत और मांग के रिलेशनशिप को, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने आप में बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, बहुत विस्तृत मैटर है, लेकिन संक्षेप में अगर हम कहें तो 5 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मानते हैं। एक जो है वो परफेक्टली इलास्टिक जिसको कहते हैं, पूर्णतया लोचदा। दूसरा जो होता है रिलेटिवली इलास्टिक होता है, यानी कि सापेक्षिक लोचदा। एक होता है जिसको यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, यानी कि एकदम समानुपातिक, 10% बढ़ेगा तो वो 10% घटेगा। तीसरा ये हो गया। चौथा होता है जिसको हम रिलेटिवली इन इलास्टिक कहते हैं, कि मतलब सापेक्षिक बेलोचदार। और पांचवा जो होता है उसको परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं, यानी कि पूर्णतया बेलोचदार। अब इसमें थोड़ा सा एक आप जान लीजिए कि जो इसका दो एक्सट्रीम है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक जो मैंने सबसे पहले कहा, और परफेक्टली इन इलास्टिक जो मैंने सबसे लास्ट में कहा, ये दोनों जो है वो काल्पनिक है। ये वास्तव में ऐसा किसी भी कमोडिटी और प्राइस का रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है। तो इसके अलावा जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में जो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक के आसपास रहता है। और उसी तरह से जो कर्व होता है, जिसको हम आगे अगर मार्केट का चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ओलिगोपोली मार्केट होता है, जिस मार्केट में हम रहते हैं, उसका जो डिमांड कर्व होता है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक होता है। धन्यवाद।
तो दोस्तों, अगर आप अर्थशास्त्र की तरह और भी कई विषयों को पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो सुनते रहें हमारा खास कार्यक्रम करियर की बात। अगर आपके मन में भी है करियर से जुड़ा कोई सवाल, तो फोन में अभी दबाएं नंबर 3 का बटन और रिकॉर्ड करें अपनी बात।